الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد وأبو داود والترمذي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیو پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں دو چیز بنائی ہے ایک ہے قلب اور ایک ہے قالب قلب اور قالب آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں ایک جسم ایک روح قلب کے معنی دل ہے اور قالب کے معنی بدن ہے دوسرے الفاظ میں جسم اور روح ہے اللہ تبارک و تعالی نے جسم کی ضرورت جو ہے بنائی ہے کھانا کھائیں گے تو جسم باقی رہے گا پیئیں گے تو پانی پیئیں گے تو جسم باقی رہے گا آرام سے سوئیں گے نیند سے نیند بھری نیند سے تو پھر جسم میں تازگی باقی رہے گی ورنہ آدمی مینٹل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے جسم کی راحت کے لیے اگر کھانا نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے پانی نہ ملے انسان مر جاتا ہے نیند نہ ملے تو بھی انسان مر جاتا ہے یہ تین چیزیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جسم کے لیے ہیں اور جسم کو اللہ نے روح کے لیے پیدا کیا جسم کو اللہ نے روح کی ضرورت کے لیے پیدا کیا جس دن روح نکل جاتی ہے بدن سے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لاش بھائی لاش وہاں پر ہے لاش کے معنی لاش ہے اب کچھ نہیں ختم ہو گیا بدن سے جب روح نکل جاتی ہے تو آدمی بالکل لاشے ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ سو سکتا ہے کچھ بھی نہیں نہ کسی کو پہچان سکتا ہے نہ کسی کو بلا سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بلکہ یہاں تک کہ دو تین دن ہو جاتے ہیں روح نکلنے کے تو گھر والے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ باڈی کو جلدی دفن کر دو وہ بیوی جو شوہر سے محبت کرتی ہے وہ کہتی جلدی لے جاؤ وہ اولاد جو ماں باپ سے محبت کرتے تھے وہ بھی کہیں گے جلدی لے جاؤ یا پھر اس کو کیا کرو موچری میں رکھ دو फ्रीजर में रख दो, मालूम होता है बदन तो है, हाथ भी वही है, आंख भी वही है, जबान भी वही है, पैर भी वही, पूरा बदन है, क्या बात है। आज तक तुम मोहब्बत करते थे, अब कहते इसको ले जाओ। आज तक तुम प्यार करते थे, अब कहते इसको मोचनी में रख दो, मां को ले जाओ, बहन को ले जाओ, भाई को ले जाओ, बाप को ले जाओ, क्या बात है। बदन तो वही है, मालूम होता है कि उसके अंदर में कोई चीज थी जो वो असली थी, जिसकी वजह से इंसान को इंसान कहते हैं। अगर रूह ना हो तो इंसान नहीं, मुर्दा है, लाशें हैं, लाशें। मालूम होता है बदन के अंदर में असल अगर कोई चीज है तो वो रूह है। इसलिए तो बदन तो मिट्टी से बना है, बदन तो मिट्टी से बना, असल तो आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी ही से बने, और हमारी असल भी तो मिट्टी है। हर चीज खाने पीने की मिट्टी से आती है, अगर हम नहीं खाएंगे तो जिस्म बाकी नहीं रहेगा। मालूम होता है हमारी असल भी जिस्म है, मिट्टी है, और रूह जो है वो ऊपर से आती है, पाकीजा चीज है, वो अल्लाह की तरफ से आती है। इसीलिए बच्चा जब 120 दिन का 120 डेज 4 महीने का हो जाता है मां के पेट में, तो स्पेशल फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है और उस बच्चे के पास होता है। मां को तो पता नहीं होता है, वो फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आता है, रूह उसमें डाल दो। 4 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है तो फिर उसमें रूह डाली जाती है, रूह डाली जाती है, और वो फरिश्ता फिर अल्लाह से पूछता है कि ये मोमिन रहेगा या गैर ईमान वाला, ये नेक बनेगा या फिर बुरा बनेगा, कितनी रोजी, कितना खाना, कितना पीना, सब लिखा लिख दिया जाता है उसी वक्त, मां के पेट से ही लिख दिया जाता है, बाहर आकर नहीं। जो तकदीर में लिखा है वही लेकर आते हैं, इसके लिए हवाले कर दिया जाता है, इतने दिन जिएगा, इतने साल जिएगा, ये खाएगा, ये पिएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ मां के पेट में लिख दिया जाता है। मालूम होता है कि असल चीज वो रूह है, और रूह मुझे और आपको नजर नहीं आती, क्यों? इसीलिए तो उन्होंने सवाल किया, यहूद नसारा ने, मुशरिकी ने मक्का से कहा कि जाकर नबी से पूछो, अगर वो 3 बातों में से तीनों का जवाब देते तो वो नबी है, अगर जवाब न दे तो वो नबी नहीं है। एक जुल्करनैन कौन थे, एक असाबे कहफ कौन थे, और तीसरा रूह के बारे में पूछो। अल्लाह ने फिर आयत उतारी, वयस अलूनका अनिर रूह, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, उनको बतला दो, कुल कुलिर रूह अर्रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे रब का हुक्म है, बच्चा जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता है, बच्चा मर जा तो मर जाता है, इंसान जिंदा रहे तो जिंदा, रूह अल्लाह का हुक्म, किसी को नजर नहीं आता। तो ये खाना पीना सोना घूमना सब कुछ जिस्म की राहत के लिए है, मेरी बात गौर से सुनो, ये जिस्म की राहत के लिए है, और जिस्म रूह के लिए है। इसीलिए मैं अगर खाना खाऊं ताकि मेरी जिंदगी बाकी रहे, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा, मैं इबादत करूंगा, मैं सोऊंगा, तो मुझे नमाज में मजा आएगा, राहत होगी, वरना मैं मेंटल हो जाऊंगा। अगर ये खाएगा पिएगा सोएगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद के लिए, तो इसका 5 घंटा सोना भी इसका इबादत है, इसका खाना भी इबादत है, इसका पीना भी इबादत है, इसके सारे दुनियावी कामकाज वो सब क्या बन जाएंगे, इबादत बन जाएंगे। अरे भाई तू 10 आधा घंटा खाने के लिए बैठा है, खाने में खाऊंगा तो नमाज आराम से पढ़ सकूंगा, वरना भूखा आदमी, इसीलिए हदीस में आता है जब भूख लगी है तो पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़ो। तुम्हें अगर बाथरूम की जरूरत है, टॉयलेट की, पहले वहां जाओ फिर नमाज पढ़ो। मालूम होता है नमाज में राहत चाहिए, अगर खाएगा नहीं नमाज में राहत नहीं होगी, आराम से नमाज नहीं पढ़ सकेगा। तो इसका खाना पीना ये सब कुछ है, ये नेमत बन जाएगी, ये इबादत बन जाएगी। क्यों? इसलिए कि इंट्रोडक्शन है, मुकदमा है इबादत के लिए। तो मेरी बात समझ आ रही है? मालूम हुआ कि जिस्म असल में इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं। अगर यही है तो फिर ये सारे गैर मुस्लिम इंसान हो गए। असल इंसान रूह है और रूह को बनाना है, ये असल इंसान, वरना सब जानवर है। अल्लाह की नाफरमानी करने वाले कुल अल्लाह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कुरान में कहते हैं, बल हुम अदल, ये जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर है। अल्लाह तो कहते हैं उससे भी ज्यादा गुमराह। तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं जगह जगह पर, असल इंसान के अंदर में रूह है, रूह है। और जो आदमी रूह के ऊपर मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, जो रूह पर मेहनत नहीं करेगा वो नाकाम होगा। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि रूह का तकाजा क्या है? अल्लाह की इबादत है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, लियाकुलून नहीं, लियाशरबून नहीं, खाना पीना नहीं। रूह का तकाजा इबादत है। मालूम होता है कि रूह को सुकून मिलेगा नमाजों से, रूह को सुकून मिलेगा अल्लाह की कुरान की तिलावत से, रूह को सुकून मिलेगा अल्लाह के जिक्र से। इसी को कहते हैं ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल को इत्मीनान होता है अल्लाह के जिक्र से, कुरान की तिलावत से। और सबसे बड़ा जिक्र कुरान की तिलावत है। मालूम होता है कि रूह को सुकून मिलेगा उन तमाम चीजों से जिससे अल्लाह तबारक व ताला ने करने का हुक्म दिया है और जिससे रुकने का हुक्म दिया है। जो करने का हुक्म दिया उसको करो, और जिससे रुकने का हुक्म दिया उसे रुक जाओ। हकीम बिन हिजाम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना, साहब रजी अल्लाह तआला का नाम सुना, साहबी है, मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं जब मुसलमान नहीं था मैंने बहुत खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, बहुत खर्च किया, अल्लाह हमको खर्च करने वालों में से बनाए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ ज्यादा बेहतर है, खैर है लेने वाले से। इसलिए जो आदमी मांगता है, हरेक के सामने जाकर मांगता है, लाओ भाई लाओ भाई लाओ भाई लाओ भाई, तो कयामत के दिन उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होगी, ऐसे हड्डी बोन्स। नबी शासन फरमाते हैं बोन्स, कि जैसे स्टैचू कहते हैं ना, डर लगेगा इंसान को, हाँ स्केलेटन, क्या बोलते हैं स्केलेटन बोलते हैं ना, जहन में भी आए सब, स्केलेटन है ये बिल्कुल, ऐसे कोई गोश्त नहीं है, बस हड्डी हड्डी है, सब हड्डी, क्योंकि ये मांगता था, मांगता था। उस पर से वो, मैंने एक वाक्य पहले भी सुनाया था कि एक शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक आदमी बहुत मांगता था, रोजाना जाता था, बहुत पैसे थे उसके, मालदार था, लेकिन मांगने की आदत थी, घर घर जाता था, मांगता था, जो भी लाता था वो उस आदमी के, एक मालदार आदमी के मकान पर छोड़ देता था, तू जमा कर जमा कर जमा कर, बहुत पैसे जमा हो गए। उस जमाने में कॉइन होते थे ना, नोट नहीं होती थी, कॉइन, दिरहम्स दिनार्स कॉइन होते थे, जमा किया उसने बैग भरकर। अब 5 या 6 दिन तक वो मांगने वाला देने के लिए नहीं आया, उसको फिक्र हुई, यार किधर गया वो, तलाश करता 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 उसके घर पहुंच गया, उस फकीर के घर, देखा वो तो बिस्तर पर है, मरने की तैयारी है, मर रहा है। उसने कहा क्या हुआ, कहा मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि तू कब मेरे पास आए कि मैं वसीयत करूं। कहा क्या वसीयत? कहा मेरे जितने पैसे कॉइन तेरे पास है, मेरे मरने के बाद मेरे साथ कब्र में रख देना, सारे पैसे वो कॉइन्स मेरे साथ कब्र में रख देना। जी रख दूंगा भाई, आपका ही पैसा, मेरा तो है नहीं। उसका इंतकाल हो गया, दफन के लिए ये भी चला गया। भाई इसकी वसीयत है ये पैसे इसके अंदर में रख ले। ठीक है रख दो भाई, दफन कर दिया, कब्र बंद हो गई। 5 महीने 6 महीने हो गए, इस आदमी के दिमाग में शैतान ने डाला कि वो तो खत्म ही हो गया होगा, मर चुका होगा, उसका बदन भी खत्म, लाशें तो ऐसे भी हो गया, चलो उसकी कब्र खोद कर, उसको पैसे का क्या काम है, अभी ऐसे पड़ा हुआ होगा, मैं ले आऊं और मैं इस्तेमाल कर लूं। चुपचाप से गया, कब्र को खोदी तो देखा वो बैग खाली है, वो सारे कॉइन उस मुर्दे के बदन के ऊपर गरम जहन्नम की आग से चिपकाए गए हैं, सारे बदन के ऊपर चिपकाए गए हैं, ऐसे पूरे बदन पर, और वो आग में गर्म है। इसने सोचा चलो यार जाते हुए एक ही तो एक तो निकाल लूं, उसके बदन से एक खींच लूं मैं। उसने पूरी कोशिश की, खींचा तो वो तो कैसे जहन्नम की आग से चिपकाया गया है, निकला नहीं, लेकिन इस आदमी को जहन्नम की आग लग गई उसकी उंगली में, ऐसा के उसको बाहर फेंक दिया। जैसे आदमी सॉकेट में उंगली डाले तो कैसे दूर जाके गिरता है, ऐसे ही दूर जाके गिरा, घबरा गया, जल्दी जल्दी कब्र को बंद करके भागा। लेकिन उसका यह हाथ जलन करने लगा, बहुत जलन, क्योंकि ये दुनिया की आग नहीं थी, ये दुनिया की बिजली नहीं थी, जहन्नम की आग थी, जलन 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 जलन, बहुत जलन करने लगा। अब ये इस हकीम के पास, उस हकीम के पास, इस डॉक्टर के पास डूबते को टिनके का सहारा चाहिए, डूबते को टिनके का सहारा, कुछ ना कुछ मिल जाए मैं बच जाऊं, सारे डॉक्टर के पास। लेकिन ये जहन्नम की आग को दूर करने वाले डॉक्टर थोड़े होते, कौन दूर कर सकेगा, कोई नहीं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि किसी से जहन्नम की आग को दूर कर सके। दुनिया की आग के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, फायर ब्रिगेड को बुला लेंगे या कुछ लगा देंगे दवाएं वगैरह, ठीक हो जाएगा। जहन्नम की आग तो, दुनिया की आग तो 70 टाइम वॉश की गई है, हदीस में है, वॉश के करके अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। जहन्नम की आग तो बिल्कुल वॉश नहीं की गई, वो तो काली खतरनाक आग है, और वो जरा सी भी लग जाए, जरा सी भी, फरमाया राई के दाने के बराबर भी अगर दुनिया में जहन्नम की आग डाल दी जाए, कयामत तक को भी ग्रीनरी ना हो, यह हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते जरा सी बिल्कुल नहीं। यहां तो वो पूरा उसका कॉइन खींचने के ले गया। अब किसी ने उसको कहा भाई ये शाह अब्दुल अजीज साहब का वाकया है दिल्ली का, सही सच्चा वाकया। फरमाया शाह साहब है दिल्ली में बहुत बड़े अल्लाह के वली, शाह अब्दुल अजीज तो शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, और इनकी जिंदगी क्या बताऊं, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, सारी दुनिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी में भी बहुत सारे लोगों की चेन हदीस की सनद, हदीस की सनद में, सबकी हदीस की सनद में शाह अब्दुल अजीज का वास्ता आता है। जब तक शाह अब्दुल अजीज तक नहीं पहुंचेगा हमारी सनद पूरी नहीं होती, फिर शाह वलीउल्लाह उनके वाले सबकी, इतने बड़े मुहद्दिस थे वो, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, जिन्होंने कुरान की तफसीर सिर्फ 3 जिल्द लिखी, सूरह बकरा की 2 जिल्द और 30 पारे की 1 जिल्द। अल्लामा अनवर शाह साहब फरमाते हैं अगर ये पूरे कुरान की तफसीर लिखते तो तफसीर का हक अदा कर देते, बहुत बड़ी तफसीर लिखी है उन्होंने। शाह अब्दुल अजीज साहब के पास चला गया, ये जाकर हजरत हजरत रोता रहा रोता रहा, बहुत रोया, कहा क्या हुआ, वाकया सुनाया। उसने कहा हजरत इस तरह से वाकया हो गया कब्र का, मैं तो निकालने के लिए गया तो बहुत जलन है, अभी ये जलन ऊपर जा रही है मेरे बदन में। कहा ये तो भाई जहन्नम की आग है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इतना बड़ा मुहद्दिस और मुफस्सिर कहता अल्लाह का वली, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसने रोना शुरू किया, इतना रोया, ओ आंखों से आंसू 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 निकल रहे हैं। हजरत ने कहा ये आंसू ले ऐसे और अपने हाथ पर लगा, आंसू ले अपने हाथ पर लगा, इसलिए कि तू अल्लाह के खौफ से रो रहा है, जहन्नम से बचने के लिए रो रहा है, ले इसको आंसू को ले आंखों से, रोता जा। और उसको जैसे ही वो आंसू लगाता गया जहन्नम क्या खत्म हो गई, इसका बदन नॉर्मल हो गया। इसीलिए हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर कोई दुनिया में अल्लाह के सामने रोया तोबा करते हुए अल्लाह के खौफ से, अगर जो उसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर अगर आंसू निकला है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। इतना कदरदान है आंख के आंसू। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो कतरे कभी जहन्नम में नहीं जाएंगे, एक अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला जिसका खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है शहादत का वो कतरा, और एक इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है आंसू का कतरा, ये दोनों कतरे अजीब हैं, उस पर जहन्नम की आग हराम है। तो मैं क्या कह रहा था, अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, अल्लाह हमें देने वालों में से बनाए, अल्लाह हमें देने वालों में से बनाए, चुपचाप खुलकर छुपकर अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, देने वाले। हकीम बिन हिजाम देखो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जब मुसलमान नहीं था मैंने बहुत खर्च किया, कई गुलाम आजाद किए मैंने, गुलाम को क्या है आजाद कर दिए मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, अब मैं मुसलमान हो गया, अब कुछ तो बदला, इसलिए कि नेकी नेकी को खींचती है। वो कहते हैं नेकी नेकी का पोस्टमैन है, तुम एक नेकी करोगे वो नेकी दूसरी नेकी तुम्हारी जिंदगी में लाएगी, तुम एक अच्छा काम करोगे तो अल्लाह उस अच्छे काम पर दूसरे काम करने की तौफीक देगा। इसीलिए हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले के दादा शेख है, सरखेल है इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह, उनको किसी ने पूछा हजरत कैसे पता चले कि मेरी नमाज कबूल हुई, कैसे पता चले कि मेरी खैरात कबूल हुई, कैसे पता चले कि मेरा रोजा कबूल हुआ, कैसे पता चले कि मेरी तिलावत कुरान कबूल हुई, तो हजरत ने फरमाया अभी तक आसमान से कोई वही नहीं आई कि मैं तुम्हें बताऊं कि तेरी नमाज कबूल होगी। फिर उसके बाद कहा यह बात जरूर है कि तू एक नमाज पढ़ता है उसके बाद दूसरी नमाज पढ़ने के लिए आता है, समझ जाओ तेरी पहली नमाज कबूल हो गई, नेकी नेकी को खींच कर लाई, तेरी पहली नेकी कबूल हो गई, वो दूसरी नेकी के लिए अल्लाह अल्लाह के सामने लाया, तेरी पहली खैरात कबूल हो गई कि दूसरी खैरात की तौफीक दी, तेरी पहले कुरान की तलावत कबूल हो गई फिर अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक दी। मालूम होता है नेकी नेकी का दाइया है, पोस्टमैन है, डाकिया है, डाकिया माना पोस्ट, डाकिया के माना पोस्टमैन है, नेकी नेकी का पोस्टमैन है। जैसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के वाक्य मैंने सुनाया था, एक आदमी कह रहा था अल्लाह 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 अल्लाह, ओ शैतान उसके पास आया और आने के बाद कहा तू अल्लाह अल्लाह करता है, सामने से तो कोई जवाब है नहीं, अल्लाह इतना चलेगी लब्बैक लब्बैक, मैं अगर कहूं भाई इकबाल भाई पुला भाई नजीर भाई सभी वो मैं बुलाऊं तो हाँ जी है जी बोलिए, क्या कहते हैं जी बोलिए, जवाब मिलता है, या तुम अल्लाह 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 तो कोई जवाब देता नहीं, देते हैं अल्लाह, कभी देखा आपने, हाँ बोल भाई दाऊद भाई तुमने नमाज पढ़ी बोल क्या चाहिए, कभी आया देखा अल्लाह, कभी नहीं आया, कभी नहीं, अल्लाह अल्लाह हम करते हैं जिक्र मजलिस हर फ्राइडे को, कभी जवाब सुना हमने नहीं सुना। तो शैतान ने कहा अरे तू अल्लाह अल्लाह करता है अल्लाह तो कोई जवाब दे, जाके सो जा, टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, जाके सो जा, जाके सो गया। ख्वाब में खिज्र अलैहिस्सलाम आए, मौलाना रूम ने लिखा ही मसनवी शरीफ में, खिज्र अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद कहा भाई तू सो गया ख्वाब में, कह रहे उसको हां मैं जिक्र कर रहा था, अल्लाह जवाब नहीं दे रहे। मैं जिक्र कर रहा था, कहा शैतान ने तुझे गुमराह कर दिया। तू पहली बार अल्लाह कहता है तो ये अल्लाह तुझे तौफीक देता है अल्लाह कहने की, वरना दुनिया में हजारों हैं, दुनिया में हजारों उसको तौफीक नहीं मिलती। तूने जब अल्लाह कहा, ये अल्लाह की तौफीक से हुआ। तूने कुरान की एक आयत पढ़ी, कुरान खोला, ये अल्लाह की तौफीक से हुआ। अब तू आगे फिर अल्लाह कहता है तो तेरा पहला अल्लाह जो अल्लाह ने तौफीक दी कबूल हो गया। अब दूसरी बार कहता है अल्लाह, अब तू कहता जा रहा है हर अल्लाह अल्लाह किया कबूल है। वो मेरी बात समझा रही है? तो नेकी नेकी को खींचती है। तो हकीम बिन हिजाम कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने तो बड़े गुलाम आजाद किए जब मैं मुसलमान नहीं था, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला? बुखारी शरीफ क्या हदीस है ये? अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्लमता अला मा अस्लफ्ता मिन खैरिन, जितना नेकी का काम तूने कुफर की हालत में किया है अल्लाह तबारक व ताला ने उस नेकी की वजह से तुझे ईमान अता कर दिया, जन्नती बना दिया। और ईमान से बढ़कर कोई नेकी है? ईमान से बढ़कर कोई नेकी नहीं। कयामत के दिन एक आदमी आएगा कुरान में है तीसरे सिपारे में, वो कहेगा कि अल्लाह दुनिया भर सोना मेरे पास से ले ले, दुनिया भर चांदी ले ले, दुनिया भर पैसे मेरे पास से ले ले, मेरे पास इस्लाम नहीं है, मुसलमान नहीं, कलमा नहीं है, बस मुझे माफ कर दे, जन्नत में भेज दे। अल्लाह कहेगा मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह कुरान में कह रहा तीसरे सिपारे के आखिर में, कुछ नहीं चाहिए आज मुझे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहिए। तो तेरे हजारों लाखों खर्च किए उस पर तुझे अल्लाह ने ईमान दिया, अस्लमता तू मुसलमान हुआ, इस्लाम कबूल किया, अलामा अस्लमता मिन खैर, जितने पिछले तूने नेकी के काम किए उस पर तूने। और इस्लाम लाने के बाद हजरत हकीम बिन हिजाम गरीब हो गए, गरीब हो गए। पहले जमाने बड़े मालदार थे और हम जैसे होते, देखो सहाबा बदजन नहीं होते, हाँ यार मैं तो पहले मुसलमान नहीं था तो बहुत मालदार था, अभी मुसलमान हो गया तो पैसे ही खत्म हो गए। हम कहते हैं ना यार ओ तहज्जुद पढ़ता हूं, तौबा करता हूं, ओ तीन तीन पारे रोजाना पढ़ता हूं, फिर भी बरकत नहीं होती, फिर भी ये नहीं। अरे भाई मैं सारी नमाजें पढ़ता हूं, कितने चिल्ले पर चिल्ले, रट्टे पर रट्टे, जिक्र पर जिक्र करता चला जाता हूं, लेकिन बरकत ही नहीं होती, पैसे ही नहीं, जॉब ही नहीं मिलता, जॉब ही नहीं मिलता। वो एक आदमी ने मुझे कहा हजरत कोई जॉब के लिए वजीफा बदला दीजिए। सो मैंने कहा यासीन शरीफ पढ़ो, तो ठीक है। 10 दिन के पास मेरे पास आया, कहा मैं हजरत 10 दिन हो गए यासीन पढ़ता हूं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। मैंने कहा कैसे पढ़ते हो? यासीन 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 यासीन। अरे भाई यासीन नहीं, पूरी यासीन पर ना, पूरी यासीन पर, तुम्हें बात आ रही है, पूरी यासीन पर अल्लाह के नबी का वादा है, अल्लाह का वादा है कि सुबह जाएगा अल्लाह तेरे लिए दरवाजे खोल देगा। यासीन शरीफ सुबह पढ़ ले, 10 कुरान का सवाब मिलेगा। यासीन शरीफ पढ़ ले, अल्लाह तेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। कभी तूने कुरान को यासीन यासीन मुंह पे पढ़ लिया? तुम्हें नहीं बात। और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हकीमुल उम्मत ने लिखा है, एक आदमी बहुत परेशान डिप्रेशन में था, हजरत ने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये पढ़ ला हौला 100 बार तो अल्लाह तेरे डिप्रेशन को खत्म कर देगा, 100 बार पढ़ेगा तो 100 बीमारी की दवा है, उसमें सबसे छोटी डिप्रेशन है, घबराहट है, परेशानी है। गया एक हफ्ते के बाद, हजरत मेरे बड़ा पढ़ा, 100 क्या 200 बार, कैसे पढ़ा? ला हौला ला हौला ला हौला ला हौला। अरे भाई ला हौला नहीं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बुखारी शरीफ में पूरा पढ़। तो कभी ये भी होता है। तो हकीम बिन हिजाम रहमतुल्लाह अलैह, हम तो बदजन हो जाते हैं लेकिन सहाबा बदजन नहीं होते। जिंदगी पर हाथ नहीं फैलाया हकीम बिन हिजाम ने कि चलो मैं साहबी हूं, मैं गरीब हो गया, कभी नहीं। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी बात लिखते हैं, हां भाई सोने के पानी से दिल पर लिखो, यहां अल्लाह कभी दौलत देता है तेरे ईमान की हिफाजत के लिए। क्या कह रहा हूं मैं? तेरे ईमान की हिफाजत के लिए। और कभी अल्लाह दौलत को ले लेता है तेरे ईमान की हिफाजत के लिए। दोनों में इमाम गजाली ने लिखा है कैसे? कि बाज लोग ऐसे हैं जो गरीब है, यानी उसके पास दौलत है, अल्लाह उससे दौलत ले ले और गरीब हो जाए तो वो ईमान को छोड़ देगा। हदीस में आता है कादल फकरु अन यकून कुफरा, कभी कभी गरीबी इंसान को काफिर बना देती है। मलावी में जाकर देखो, इंडिया में जा, साउथ इंडिया में जाकर देखो, कितने लोग ईसाई बन गए। क्यों? पैसे नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, भूख है, बच्चों के लिए नहीं। सो ये मशीनरी जाती है इन लोगों की और क्या कहती है, हम तुम्हें खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, हम तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, चलो हमारा कलमा पढ़ लो, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह दो। हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। कादल फकरु, कभी गरीबी इंसान को कुफर तक, तो अल्लाह उसको माल दे देता है ताकि तेरे ईमान की हिफाजत रहे। और कभी कभी इंसान बहुत मालदार होता है और माल के गुरूर में तकब्बुर, मेरे जैसा कोई नहीं, इंसान तकब्बुर में तो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को ले लेता है, इसलिए कि तकब्बुर की वजह से तेरा ईमान भी चला जाएगा, तो लोगों को ठोकरे मारेगा, गरीबों को गालियां देगा, मजाके करेगा, फुला और फुला, ईमान से निकल जाएगा तो जालिम बन जाएगा। तो इमाम गजाली ने बड़ी अजीब बात लिखी, फरमाया कभी अल्लाह माल देता है तेरे ईमान की हिफाजत के लिए, इसलिए कि वो मशीन बनाने वाला है, इंसानी मशीन उसने बनाया, वो जानता है कि इसको माल नहीं दूंगा तो ये इस्लाम से निकल जाएगा। और कभी कभी अल्लाह तबारक वताला माल को ले लेता है, अगर माल दूंगा तो ये नाफरमान बन जाएगा और ऐसे ऐसे काम करेगा हराम के कि ईमान से निकल जाएगा, तो उसे माल को ले लेता है। तो बात चल रही थी भाई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं किस लिए? जिस्म को बनाने के लिए, कि भाई जिस्म ऐसा बनाओ जरा जिम में जाकर बराबर माशाल्लाह सुबह उठकर दौड़ो, किसके ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडमिल पर दौड़ना है, और कभी ये उठाओ कभी ये उठाओ, है ना, बराबर। जिस्म बनाने के लिए नहीं आए मेरे अल्लाह। अगर जिस्म बनाने के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा होता तो बेस्ट रेसिपी आज हमारी माँ और बहनों के पास होती, भाई नबी अल्लाह ने भेजी है, खोरमा कैसे बनाना, बिरयानी कैसे बनानी, पुलाव कैसे बनाना, और बेस्ट टी कैसे बनानी, वो स्पेशल चाय की रेसिपी आ जाती, स्पेशल बिरयानी की रेसिपी अल्लाह के नबी हमें बताते, मालूम ड्रिंक कैसा पीना है, क्या है, किस तरह, मालूम होता है अल्लाह के नबी जिस्म बनाने के लिए दुनिया में तशरीफ नहीं लाए भाई, समझ में आई बात, जिस्म बनाने के लिए नहीं आए अल्लाह के नबी, तो किसके लिए आए हैं, रूह बनाने के लिए आए हैं, इसलिए भाई रूह बनाने के लिए है। हाँ, और रूह बनती है नमाजों से, रूह बनती है रोजों से, रूह बनती है जकात से, रूह बनती है जिक्रुल्लाह से, रूह बनती है कुरान की तिलावत से, और रूह बनती है अल्लाह की यादों से, रूह बनती है मेरे नबी के तरीके पर चलने से, रूह खराब होती है गुनाहों से, रूह खराब होती है जीना से, चोरी से, बुराई से, हसद से, गीबत से, परेशानियों से, जुल्म से, तकब्बुर से, बुराइयों से रूह खराब होती है। तो रूह बनती है अल्लाह के बताए हुए कामों पर चलने से, रूह बिगड़ती है अल्लाह ने जिन कामों से रोके उसके करने से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए हैं कि इसमें रूह बनाने का जिक्र है, जिस्म बनाने का जिक्र नहीं। ये बात हमेशा याद रखो, इसीलिए रूह बनती है तो पता चलता है हलाल क्या है हराम क्या है, रूह बनती है तो पता चलता है जायज क्या है नाजायज क्या है, रूह बनती है तो पता चलता है बीवी कौन है और गर्लफ्रेंड कौन है, रूह बनती है तो पता चलता है मेरा शौहर कौन है और मेरा देवर कौन है, रूह बनती है तो पता चलता है मेरा शौहर कौन है मेरा पड़ोसी कौन है। अपने आप को बचाती है, अपने आप को बचाता है और चीज को उसको फर्क नजर आता है, वरना फिर रूह बिगड़ती है तो फिर इसको हलाल हराम का पता नहीं चलता। और मेरी बात सुन आती है, मालूम होता है असल इंसान किसको कहते हैं, रूह को, इंसान किसको कहते हैं, और रूह निकल गई तो ये मुर्दा है, इंसान नहीं है। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद लिख कर जाओ मेरी माए और बहने, लिखा है ये रूह है ना हर वक्त परेशान रहती है अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह की। आज का बयान बड़ा अजीब लगता है, अभी तो मैंने किताब को शुरू ही नहीं की, मैंने ऐसे ही दिमाग से दिमाग बढ़ती जा रही है, सुनना ही बात। पर मैं अल्लाह शाह फरमाते हैं रूह का रूह परेशान रहती है हर वक्त, अल्लाह को याद करूं अल्लाह को याद करूं, लेकिन ये बंदा सुबह उठता है अल्लाह को याद फजर में नहीं करता है, तैयार हो जाता है, शर्ट पैंट टैंक रेडी होकर काम पर जॉब पर चला जाता है, नाश्ता किया भागा, शाम को आता है और फिर भी रूह परेशान है, भाई पूरा दिन तो मुझे टाइम नहीं दिया अल्लाह को याद करने का, चलो मगरिब ईशा में फिर भी नहीं, ठका ठुका बैठा जरा कंप्यूटर बैठ गया या बच्चों के साथ खेलता रहा, रूह परेशान है कब अल्लाह याद करे, कब अल्लाह को याद करूं। फिर रात में बिस्तर पर जाता है खाना खा के बीवी से बातचीत में मशगूल हो गया और उसी में मोहब्बत की प्यार की बातें करते करते वो सोचता सोचता सो गया, रूह परेशान है यार पूरा दिन गुजर गया अल्लाह की याद नहीं हुई, तो अभी रूह परेशान होती है, इसकी नींद लगती है 2-3 बजे ख्वाब का पूरा होने के बाद, और रूह अभी रूह अल्लाह तक नहीं पहुंची, उससे पहले अल्लाह खुद आ जाता है तहज्जुद के वक्त, तू तो नहीं आई मैं अल्लाह तेरे पास आ गया, बुखारी शरीफ में है। हल में मुस्तगफिर इंफाक, मांग क्या मांगती है, सवाल कर क्या सवाल करती है, मालूम होता है रूह हर वक्त परेशान रहती है मैं अल्लाह को याद करूं, लेकिन बंदे के पास टाइम नहीं कि रूह को टाइम दे कि वो किसको याद करे, अल्लाह को याद करे। इसलिए भाई दुनिया का काम तो छोड़कर जाना है, देखो फिरौन को 400 years ही गॉट नो हेडेक एट ऑल, लेकिन मौत उसकी भी आ गई, वो भी मर गया, ही ऑल्सो डाइड 400 years ही वॉज लिविंग नो हेडेक एट ऑल इन हिज लाइफ but he died also. Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Anbiya, he also passed away. Each and every person have to die. Each and every person have to bury in the grave and they have to answer to Allah tabarak wa ta'ala in the grave. No one knows when the person is going to die. Today the youngsters dying too. Today is elderly people dying too. Today the children are dying too. You know that so many people are dying. You hear every day in newspaper, so many youngsters die, so many children die, so many people die. They drown. This happened, that happened. अभी कल के news में था वो दर्द की गोली, वो कहता कौन कितनी लेता है, उसने 10 ले ली, एक ने 15 ले ली, एक ने 12 ले ली, एक ने 14, वो 60 आदमी सब एक वो विन होने के लिए, प्राइज विन होने के लिए सभी मर गए, प्राइज तो पीछे रह गया, everyone died, 60 people died. तो बात सुन में आ रही है पागल पने का भी, लेकिन याद रखो मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन अल्लाह से जिन कुरान करीम कौन सी रूह ज्यादा खुश होगी, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईना, अल्लाह कुरान में कहते हैं ए प्योर सोल, प्योर सोल हूज गोना से मुनकर, हूज गोना से मलिकुल मौत, इर्जीई कमान रिटर्न, रिटर्न इर्जी मीनिंग एक आदमी जाए, You came to this world, now you have to return. जहां से आई वहां चलो, इर्जीई तो अल्लाह के पास से आई थी ना, रूह की मैंने बताया ना शुरू में कि बॉडी तो द बॉडी इज मेड विद द सन बट द रूह इज मेड फ्रॉम अल्लाह, सो बॉडी इज गोइंग टू रिमेन हियर इन मोचरी और इन द ग्रेव, द रूह इज गोइंग टू कम आउट एंड इज गोइंग टू गो बैक टू अल्लाह तबारक व तआला, एंड इफ हिज ईमान इज देयर देन इज गोइंग टू मेक सस्ता इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन ऑफ अल्लाह तआला, and then Allah will send back to the grave when the person be buried. Aur agar Islam nahi hai, Allah ke farma bardar nahi hai, to the angel is taking the soul by the first heaven, angel is going to say we're not going to open the door for it, goes taking sijjin below the seven earth, there is no place by Allah. So pure ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i, come on, kaha ila rabbiki, towards your Rabb, Allah, creator, radiyatan mardiya, Allah is pleased with you and you pleased with Allah. Fadkhuli fi ibadi, go and see the anbiya, go and see the sahaba, go and see the waliullah. Fadkhuli jannati, then you enter where? Jannat. So if it's a pure ruh, pure soul, that our grave will become the part of the jannat. Allah will say to the angel Munkar and Nakir, open the windows of Jannat for him.
and put for him a garments of Jannat on his body and put a bed of Jannat for him till the day of Qiyamah, till the day of resurrection. Our grave is going to become Jannat for us. And if there is no iman, if there is no, we did not purify our heart, our soul, then the qabr will become the part of the Jahannam. May Allah save all of us. Khair, baat khatam yahi par kar lete hain, warna baat jyada, time is over now. So Allah pak hum apne rooh ko banane ki taufeeq ata farmaye. Rooh ko banane ki taufeeq ata farmaye. Wo Fariduddin Attar rahmatullah alayh ka naam suna hoga, jiski kitab humne padhi thi Arbi Awwal mein, Pandnama. Fariduddin Attar hai na, bahut gareeb the. He went to the shop. कौन सा बहुत बड़ी ऐसी दुकान थी, बड़ी दुकान थी, उसमें वो आदमी परफ्यूम बेच रहा था। अपने मक्का मुकाम पे करा कहती बड़ी बड़ी परफ्यूम की शॉप होती है, और कितने को भाई 2000 रियाल, 5000 रियाल, 10000 रियाल महंगी। ये अंदर में गए, इस बोतल को देख रहे थे, इस बोतल को, सारी बोतल को देख रहे थे। द शॉपकीपर आस्क्ड, व्हाई यू लुकिंग ऑल द बॉटल्स, यू वांट टू बाय और नॉट? सेड, ना मैं देख रहा हूं, गेट आउट इफ यू डोंट वांट टू बाय आउट। फरमाया नहीं, मैं सोच रहा हूं, कह रहा है सो मेनी बॉटल्स, शॉपकीपर योर सोल इज स्टक इन द बॉटल, तेरी रूह इन सारी बोतल के अंदर में है कि 2000, 5000, 10000। मैं सोच रहा हूं तेरी रूह कैसे निकलेगी इतनी बोतल में से, मैं सोच रहा हूं इतनी सारी बोतल से हाउ इज गोइंग टू बी कम आउट योर सोल फ्रॉम द सो मेनी बॉटल्स। सो आई एम थिंकिंग दैट, उसने कहा तेरी कैसे निकलेगी, जैसे तेरी निकलेगी वैसी मेरी निकलेगी, मेरी कैसे निकलेगी देखना है। वो दुकान से बाहर निकला, शेख फर्ज लत्तार ऐसे सो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रूह निकल गई, उस बुजुर्ग की रूह निकल गई। वो शॉपकीपर यही है शेख फरीदुद्दीन अत्तार, कह रहे अत्तार के माना इतर की शॉप। फरमाया उस बुजुर्ग से मैंने सबक लिया, मैंने सब बेच दिया और अल्लाह अल्लाह करने लग गया, और बाद में इतना बड़ा अल्लाह का वली बना जिसकी किताब हमने पढ़ी है अरबी अव्वल में, और उसका नाम है फरीदुद्दीन अत्तार, अत्तर बेचने वाला। समझ में आई बात? इसलिए भाई रूह हमारी कैसे निकलेगी शॉप से, फुलां से फुलां से, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, याद आएगा सब कुछ। इसलिए उससे पहले अपनी रूह को प्योर कर लो, अपने रूह को बना लो। अल्लाह मुझे और आपको, वो कहते हैं भाई आटे के डब्बे से निकलेगी या राइस के, और राइस के डब्बा और जरा बाली है कितनी है उसमें, जौ कितना है, राइस का आटा कितना है, राइस कितना है, रोटी है, ये घर में से कैसे निकलेगी। इसलिए उससे पहले पहले अल्लाह को याद करके अपने रूह बना लो। अल्लाह मुझे और आपको, हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या दल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदी अस्समावाति वल अर्ध, या बदी अस्समावाति वल अर्ध, اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हम पर रहम फरमा, अल्लाह हम पर रहम फरमा, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। ऐ अल्लाह हमें, ऐ अल्लाह तुझे मुंह दिखाने के काबिल बना दे, तुझे मुंह दिखाने के काबिल बना दे। एक दिन आएगा हमें कब्र में सुलाया जाएगा, एक दिन आएगा हमें मलिकुल मौत का चेहरा देखना है, एक दिन आएगा हमें मुनकर नकीर का चेहरा देखना है, एक दिन आएगा हमें अपने नबी का चेहरा देखना है, एक दिन आएगा हमें तेरे सामने पेश होना है। ऐ अल्लाह मौत से आने से पहले मौत की फिक्र की तौफीक नसीब फरमा, तू हिसाब ले उससे पहले हमें अपने हिसाब और रेकनिंग करने की तौफीक नसीब फरमा। लोग हमें कलमा पढ़ाए उससे पहले हमें अपने कलमा बनाने की तौफीक नसीब फरमा, लोग हमें गुसल दे उससे पहले हमें तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा, लोग हमें कफन पहनाए उससे पहले तकवा का कफन पहनने की तौफीक नसीब फरमा, लोग हमें उठा के चले उससे पहले हमें चलकर मुसल्ले पर खड़े होने की और अल्लाह की याद करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें एक बना दे, हमारी औलादों को नेक बना दे, हमारी नस्लों में औलिया कामिलीन पैदा फरमा, गुमराही से, शिर्क से, बिदात से, और अल्लाह हर किस्म की बुराइयों से, अल्लाह कुफ्र से, शिर्क से, हमें और हमारी आल औलाद और नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों में सुकून नसीब फरमा, हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा, हमें अपना बना ले। अल्लाह तेरे दीन की बातों के लिए हम बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, हमारा आना कबूल फरमा, हमारा बैठना कबूल फरमा, इस दर्स को हमारे लिए मक مغفرت کا ذریعہ بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, اب کو عافیت کا ذریعہ بنا. اللہ جو بھی جس مشکل میں پھنسے ہیں, جس کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. جہاں جہاں لوگ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کے اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما, مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما, اور جب موت آئے ایمان کی موت نصیب کر دینا. اللہ تیری رضا والی موت نصیب کر دینا, قبر کو جنت بنا دینا. اللہ آخرت کی پریشانیوں سے بچا کر بے حساب جنت میں داخل کر دینا. اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب کر دینا, عرش کے سائے میں جگہ نصیب کر دینا, جنت الفردوس عطا کرنا. اللہ تو راضی ہو جا, راضی ہو جا, جو مانگے وہ بھی عطا فرما. نہ مانگے اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اے اللہ ان مسلم مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.